जय धवला पुस्तक 14 लेक्चर नंबर 6 ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम शुद्धात्मने नमः नमो नमो सिद्धाणं नमो आयनियाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं उवसमिदसयलदोषे उवसन्तकसाय वीयरायन्ते उवसामये पणम्यूं कसाय उवसामनम् उच्चम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जय धवला टीका है जो कषाय पहुर तथा चुनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीश्वर आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 14वीं पुस्तक में अपना वही अर्थाधिकार चल रहा है चारित्र मुनि के उपशमना संबंधी, और हम पृष्ठ संख्या 27 पर आ गए। 27 यहाँ जो परस्थान की अपेक्षा अल्पभूतव देख रहे थे हम कल, कि अंतर करने के बाद नपुसक वेद की उपशमना करने वाला पहला समय वाला जीव, उस समय बंध कितना है, संक्रम कितना है, उदीर्णा कितनी है, स्थिति की अपेक्षा ये बात वहां चल रही थी। तो वहां बताएं, वहां मुनि की जो स्थिति या बनती है वो सबसे कम है, उसके बाद जो संक्रमित हो जाती है वह असंख्यात गुणी है। क्यों? बंध तो यहाँ संख्यात वर्षों का है, और वहां तो सत्ता में जितना है अंत कोड़ा कोड़ी सागर उतने का तो संक्रमण चल रहा है, इसलिए वो असंख्यात गुणी है। जितने में से जितनी स्थितियों में से उदीर्णा होती है वे भी उतनी ही है जितने में से संक्रमण होता है, क्योंकि उदयावली छोड़कर ऊपर सर्वत्र से उदीर्णा भी होती है और संक्रमण होता है। उसके बाद उदीर्ण स्थिति यानी उदय में आने वाली, उसमें एक उदय रूप निषेक और बढ़ा दो तो ये विशेष अधिक कहलाएगी। उसके बाद उन्होंने यह स्थिति उदय उदीर्णा संक्रम की बात थी कि वो किस पोजीशन पर है, उसके कितने समय हैं, उसकी स्थिति कितनी बाकी है, उसकी अपेक्षा से उसकी हमने चर्चा देखी। उसके बाद अनुभाग में अल्प बहुत्व की बात उन्होंने बताई थी पृष्ठ संख्या 24 पर, चौबीस नंबर के पृष्ठ पर इसकी बात आई है। अनुभाग की अपेक्षा बंद स्तोक है यानी अल्प है, वो एक स्थानीय और देशघाती है। उदय उदीर्णा एक स्थानीय और देशघाती होने पर भी जितना बंद होता है उससे भी वो अनंत गुणा है। उसके बाद बताया था संक्रम और सत्कर्म अनंत गुणा है, क्योंकि सत्ता में जो पड़ा है उसको यहाँ सत्कर्म का। उसके बाद सूक्ष्म सांप्राय में क्या होता होगा उसकी चर्चा चली थी अपनी, तो वहां सूत्र में आया है कृष्टियों का वेदन करने वाले के बंध नहीं होता। इसका अर्थ है सूक्ष्म सांप्राय में अभी मोनिय का कोई बंध अभी शेष नहीं है, नवे के अंत तक ही बंध होता था। सूक्ष्म लोभ का उदय होने पर अभी मोनिय का बंध नहीं होगा, ज्ञानावरण दर्शन अन्य का जितने का होगा वो होगा। तो वहां भी बताया था कि बंध तो है ही नहीं है, तो अभी जो बाकी है उसमें अल्प बहुत तो बताएंगे। तो उदय और उदीर्णा सबसे कम है। उसके बाद संक्रम अनंत गुणा कहा था, क्योंकि संक्रम तो सभी में से होता है, और यहाँ उदय और उदीर्णा तो ऊपर और नीचे के असंख्यात भाग प्रमाण स्पर्धक छोड़कर, स्पर्धक नहीं कुष्ठियां छोड़कर मध्यम रूप से उदय हो रहा था, और उससे जो सत्कर्म है वो अनंत गुणा है, क्योंकि कितना ही तो वहाँ उपशमित वगैरह भी पड़ा है। तो वो वहाँ तो स्पर्धक रूप से पड़ा है, सत्ता वाला जो अनुभाग है वो स्पर्धक रूप से है और वो उपशमित है, उसका संक्रम नहीं होगा जो ऑलरेडी उपशमित है। तो जो कृष्टि रूप से विद्यमान है वहाँ पर द्वितीय स्थिति में जो कुछ परमाणु कृष्टि रूप हुए हैं उसमें से अनुभाग का और घटना होगा, उसी को वहाँ संक्रम कहा, अपकर्षण संक्रम कहा था उसको। संक्रम दो तीन पद्धति से होता है, एक तो पर प्रकृति रूप होने को भी संक्रम कहेंगे। अब अपकर्षण में क्या संक्रमण होना, तो उसका अनुभाग घटना या बढ़ना उसको अपकर्षण या उत्कर्षण कहेंगे, यह अपकर्षण की बात। उसके बाद प्रदेशों का अल्प बहुत्व देखने के लिए यहाँ बताया था 26 पृष्ठ पर लास्ट लाइन, लास्ट वाला वो सूत्र कि प्रदेश की अपेक्षा अल्प बहुत्व देखने पर नपुसक वेद की अनुत्कृष्टि अजघन्य प्रदेश उदीर्णा सबसे स्तोक है, और उसके जो शंका समाधान है उसको हमने पढ़ा था कल। यानी अल्प बहुत्व बताने के लिए कहते हैं अनुत्कृष्ट अजघन्य प्रदेश उदीर्णा कम है, यानी नपुसक वेद की कौन सी उदीर्णा चल रही है, तो अजघन्य और अनुत्कृष्ट चल रही है। ये कौन सा जीव लिया, अंतरकरण के बाद वाला जीव लिया, उसके पहले कितने होते थे उसकी अपनी चर्चा नहीं है। तो यहाँ अल्प भूत किस में लगा रहे, उदय उदीर्णा में, यानी उदीर्णा में उदय में वगैरह वगैरह संक्रमण वगैरह में नपुसक वेद वाला जीव लिया है, उसके उदय के साथ चढ़ेगा तभी उसका उदय उदीर्णा संभव है, यदि नहीं है तो उसमें अल्प बहुत ही घटित नहीं होगा। यानी यहाँ हमने देखे थे अंतर किए जाने के दो समय से लेकर किसी भी समय में प्रदेश उदीर्णा असंख्यात समय प्रबद्ध है, फिर भी वो सबसे कम है, एक बात हमने पढ़ी थी। अब आते हैं 27 पृष्ठ पर जहाँ से आज का विषय शुरू हो जाता है। सूत्र पहले पढ़ेंगे, जहन्नव उदव असंख्यज गुणों, प्रदेश उदय की बात चल रही है यहाँ पर। तो कहते जघन्य उदय असंख्यात गुणा, किससे असंख्यात गुणा, जो प्रदेश उदीर्णा बताई थी अजघन्य अनुत्कृष्ट, उससे उदय असंख्यात गुणा है। उदीर्णा तो जो ऊपर से परमाणु नीचे आएंगे उसको उदीर्णा कहेंगे, और उदय तो वहां ऑलरेडी जो निषेक एग्जिस्टिंग था उसके साथ वो उदीर्णा वाला भी द्रव्य मिल जाएगा, तो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां गुणश्रेणी थी और उसके गोपुच्छा जब उदय में आते हैं तो असंख्यात समय प्रबुद्ध वैसे ही वहां पड़े हैं, और उसमें और एक्स्ट्रा उदीर्ण होकर आते हैं। यह भी उसी समय का लेना चाहिए जिस समय हम अनुत्कृष्ट प्रदेश उदीर्णाओं की बात देख रहे हैं, अनुत्कृष्ट अजगण्य, उसी समय उदय कैसा है तो उससे असंख्यात गुणा है। यह भी जगन्य उदय लिया, किंतु उदीर्णा एक समय वाली होती है, परंतु उदय अंतर्मूर्त गलाने वाली गुणश्रेणी गोपुच्छा स्वरूप होता है, इसलिए उदीर्णा से उदय असंख्यात गुणा हो जाता है। एक समय में कितना ऊपर से द्रव्य नीचे आया है उसको उदीर्णा कहेंगे, वो एक समय वाली, और उदय में कहां कहां से ऊपर से सर्वत्र से अपकर्षण होकर नीचे उदयावली में आ गया है उसको उदय कहेंगे, वर्तमान समय में आता है उदीर्णा का द्रव्य प्लस वहां का निषेक ऑलरेडी जो पड़ा था वो उससे असंख्यात गुणा है। परंतु यह क्षपित कर्मवंशिक का जघन्य लेना चाहिए, क्योंकि उसके सिवाय अन्यत्र प्रकृति गोपुच्छा के साथ जघन्य गुण श्रेणी गोपुच्छा नहीं उपलब्ध होती। यहाँ जघन्य उदय भी असंख्यात गुणा है बताना था, तो ये जघन्य उदय किसके होगा, जिसकी गुणश्रेणी गोपुच्छा का साइज छोटा होगा। अब वो किसके, तो क्षपित कर्मवंशिक, यानी जिसके सत्ता में बहुत कम परमाणु अभी बाकी है, बहुत कम यानी वो भी अनंत में होते हैं। अब इस जघन्य उदय से आगे वाला उदय उसको कंपेयर करेंगे, तो कहते उपकस्व उदय विशेष आई हो, प्रदेश उदय की बात चल रही है, जघन्य प्रदेश उदय से उत्कृष्ट उदय विशेष अधिक है। क्योंकि गुणित कर्मांशिक के उसका अवलंबन लिया गया, समय वही लेना है, तो वह ऐसा जीव लेगी जिसकी सत्ता में मैक्सिमम द्रव्य पड़ा है परमाणु, वह जैसे
यहाँ पे जो पहले पॉइंट पे लिया अनुत्कृष्टाचगण्य प्रदेश सुधी ना स्ट्रोक है, वहाँ पे हमने सपित कर्मांशिक को गुणित कर्मांशिक को छोड़ा था, तो वहाँ पे गुणित कर्मांशिक को लेगी तो उदीर्णा ज्यादा हो जाएगी,
वहाँ परिणामों के अनुसार अनुत्कृष्ट अजगण्य उदीर्णा की बात की, और यहाँ गुण श्रेणी जो बनी है
यहाँ पे तो परिणाम तो समान हो जाते हैं अभिवृत्तिकरण में।
हाँ परिणाम समान हो जाते हैं, परंतु उसके पहले से गुण श्रेणी बनी थी कि नहीं?
अच्छा,
परिणाम समान होने के पहले गुण श्रेणी रूप से रचना हुई थी।
अच्छा, वो
उसी में और नए नए परमाणु भी ऐड हो गए, पहले भी गुण श्रेणी तो थी वहाँ पर, अपूर्वकरण से ही वो यथा योग्य यहाँ वाली शुरू हो गई थी। देखो यहाँ उत्कृष्ट विषय उदय में गुणित कर्मांशिक को लिया, वह जैसे क्षपित कर्मांशिक और गुणित कर्मांशिक। क्षपित कर्मांशिक ऐसा जीव है जिसकी सत्ता में परमाणु कम है और गुणित कर्मांशिक ज्यादा वाला है, दोनों ही अनिवृत्तिकरण परिणाम का आलंबन लेकर अपने अपने सदृश द्रव्य का आकर्षण करके गुणश्रेणी करते हैं, इस कारण दोनों का ही अनिवृत्ति गुणश्रेणी द्रव्य समान होता है। अनिवृत्ति में जो गुणश्रेणी बनाई है, अनिवृत्ति का अर्थ ही होता है परिणामों में समानता, तो अनिवृत्ति में जो उन्होंने गुणश्रेणी रूप से रचना की है वो तो समान है।
अनिवृत्तिकरण में भी गुणित कर्मांशिक और क्षपित कर्मांशिक दोनों की
समान होगी, अनिवृत्तिकरण वाली समान होगी। अभी पूरा हम पढ़ेंगे ना, आपको ख्याल में आएगा। अब जघन्य उदय की विवक्षा होने पर अपूर्वकरण संबंधी गुणश्रेणी के जघन्य परिणामों के द्वारा कराना चाहिए, ये तो मैंने भी पढ़ा नहीं था, परंतु यहाँ अनिवृत्तिकरण वाली गुणश्रेणी तो समान ही होनी चाहिए, तो डिफरेंस कहाँ हो सकता है? तो अपूर्वकरण से जो गुणश्रेणी बनी थी वहाँ तो क्षपित और गुणित में डिफरेंस पड़ेगा, उसमें परिणामों में तो भेद होते ही है, क्षपित गुणित के कारण वहां भी भेद हो जाते हैं। जहां जघन्य उदय की विवक्षा होने पर अपूर्वकरण संबंधी गुणश्रेणी के जघन्य परिणामों के द्वारा करना चाहिए, वहां भी परिणाम ले लिए, परंतु उत्कृष्ट उदय होने पर उत्कृष्ट परिणामों के द्वारा कराना चाहिए, इस कारण यहाँ असंख्यात समय प्रबद्धों के द्वारा विशेष अधिग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अपूर्वकरण संबंधी जघन्य गुणश्रेणी गोपुच्छा को उसकी उत्कृष्ट गुणश्रेणी गोपुच्छा में से घटाकर जो शुद्ध शेष रहे, शुद्ध शेष है जो बाकी रहेगा, उत्कृष्ट में से जघन्य माइनस किया जो शेष रहता है, जो बाकी रहता है उसको शुद्ध शेष कहा, वह स्पष्ट रूप से यहाँ विशेष अधिक देखा जाता है। क्या कहना चाहते हैं? अपूर्वकरण संबंधी गुणश्रेणी थी, उसमें जघन्य परिणाम है उत्कृष्ट परिणाम, परिणाम के कारण यहाँ जघन्य उत्कृष्टपना बन सकता है, तो जहाँ जघन्य परिणाम है उसकी गुणश्रेणी अलग, उसमें कम द्रव्य वैसा आकर्षित करके दिया जाएगा, जहाँ परिणाम अधिक विशुद्ध है, क्योंकि अपूर्वकरण में तो वेरिएशन हो सकते हैं, तो वहाँ गुणश्रेणी में भी अधिक द्रव्य दिया जाएगा, तो उसमें उत्कृष्ट द्रव्य है, इसमें जघन्य द्रव्य है, तो कितना अधिक है उत्कृष्ट से जघन्य? तो थोड़ा अधिक है, उत्कृष्ट में से जघन्य माइनस करेंगे। आप कहेंगे यहाँ तो अनिवृत्तिकरण की बात चल रही है, जब अनिवृत्तिकरण में प्रवेश किया तो वहां तो परिणाम समान होने से वो तो दोनों ही समान है, वहां अपूर्वकरण के प्लस अनिवृत्तिकरण के, और यहाँ भी अपूर्वकरण के प्लस अनिवृत्तिकरण के, परंतु अनिवृत्तिकरण दोनों जगह समान है, उसको कैंसिल कर दो। अब डिफरेंस कहाँ रहा? अपूर्वकरण की गुणश्रेणी में जो जघन्य उत्कृष्टपना था उसमें डिफरेंस रहा, वो विशेष अधिक है। अथवा हाँ, वो बाकी शुद्ध शेष का अर्थ है बाकी रहे, उत्कृष्ट माइनस जघन्य जो बाकी रहता है उसको शुद्ध शेष कहा। अभी अथवा कहकर और तीसरी पॉसिबिलिटी बता रहे, अथवा संयम गुणश्रेणी विशेष का भी आलंबन लेकर यहाँ विशेष अधिकपना दिखलाना चाहिए। संयम गुण श्रेणी है ने, देखो जो पांचवें गुणस्थान से तो गुण श्रेणी चलती है कंटिन्यूस, अब यहाँ संयम योग की लेंगे क्योंकि उपशम श्रेणी अभी चलने चल रहा है, तो संयम है छठा सातवां गुणस्थान है, वहाँ की भी अपनी गुण श्रेणी होती है और वो भी परिणाम की अपेक्षा अलग अलग होगी अलग अलग जीवों में। तो वो जीनाधिक थी तो वो जगन्यपना आगे भी बनेगा, जगन्य उत्कृष्टपना। तथा क्षपित और गुणित कर्मांशिकों की गुण श्रेणी गोपुच्छाओं में गर्भित हुई दूसरी प्रकृति गोपुच्छा भी है। ये याद है क्या सब पहले वाला प्रकृति गोपुच्छा, गोपुच्छा विशेष, हाँ ऑलरेडी यहाँ प्री एग्जिस्टिंग जो निषेक थे उसको प्रकृति गोपुच्छा कहा, बेसिक
गुणित कर्मांशिक।
अब इसमें से अपकर्षण होता है, संयम जब था तब वहां भी एक गुण श्रेणी गोपुच्छा हुई थी, प्री एग्जिस्टिंग गोपुच्छा गोपुच्छा है ना, वहां का द्रव्य प्लस जो ऊपर से दिया जाएगा वो द्रव्य। संयम में भी और अपूर्वकरण में भी जहां विशुद्धि ज्यादा है वहां अपकर्षित द्रव्य ज्यादा होगा तो वो अधिक दिया जाएगा। तो दोनों में परिणामों के वश जघन्य उत्कृष्टपना बनेगा। अब ऑलरेडी जो पूर्व में प्री एग्जिस्टिंग जो वहां निषेक थे वो क्षपित और गुणित करे अपेक्षा इसको प्रकृति गोपुच्छा कहेंगे, उसमें भी डिफरेंस है, ऊपर से कितना दिया और ऑलरेडी कितना था, दोनों मिलकर यहाँ जब वो उदय में आएगा तो दोनों का मिलकर रिजल्ट मिलेगा। वहां जो प्रकृति गोपुच्छा थी और ऊपर से जो आके मिला था, वैसे ओरिजिनली तो बहुत कम रहेगा, बाद में तो असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा होती है, वे विकृति बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, फिर भी यहाँ डिफरेंस तो है ना, वो बताने के लिए यहाँ जघन्य उत्कृष्ट कैसे घटित हो सकता है उसके लिए इतनी चर्चा थी। तो प्रकृति गोपुच्छा भी है परंतु वहां क्षपित कर्मांशिक की गुण श्रेणी गोपुच्छा से गुणित कर्मांशिक की गोपुच्छा असंख्यात गुणी होती है, जो अंतर करने के दूसरे आदि समयों में उदय के साथ पाई जाती है, तो इसमें कोई बाधा नहीं आती, इसलिए यह गोपुच्छा द्रव्य भी प्रविष्ट होकर विशेष अधिक हो जाता है। इसी का विशेषार्थ प्रकृत प्रकृत तो हुआ है, प्रकृत तो ऑर्डिनरी चाहिए सादा, प्रकृत नपुसक वेद के जघन्य उदय से उत्कृष्ट उदय प्रदेशों की अपेक्षा विशेष अधिक होता है, इसे कई प्रकार से घटित करके बतलाया है। मुख्य बात यह है कि अंतरकरण करने के बाद द्वितीय समयवर्ती जीव चाहे गुणित कर्मांशिक हो और चाहे क्षपित कर्मांशिक हो, दोनों के अनिवृत्तिकरण संबंधी गुण श्रेणी का उदय समान होता है। अनिवृत्तिकरण में आने के बाद जो गुण श्रेणी रूप से दिया था द्रव्य, यहाँ आने के बाद अनिवृत्तिकरण में जो ऊपर से दिया जाएगा वो दो क्षपित गुणित के लिए समान है, इसलिए उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिर भी जघन्य प्रदेश उदय से यहाँ जो उत्कृष्ट प्रदेश उदय विशेष अधिक हो जाता है, वह एक तो प्रकृति गोपुच्छा के कारण यानी ओरिजिनली उसमें कम था मान इसके कारण, और दूसरे अपूर्वकरण संबंधी गुण श्रेणी द्रव्य के कारण, क्योंकि वहां परिणामों में असमानता थी तो वहां जघन्य परिणाम के द्वारा जघन्य गुण श्रेणी हुई और उत्कृष्ट के उत्कृष्ट, और तीसरे संयम संबंधी गुण श्रेणी द्रव्य के कारण विशेष अधिक होता है, इसलिए भी वहां जघन्य और उत्कृष्ट वो प्रकृति गोपुच्छा या वो गुण श्रेणी का बन सकता है। प्रकृति गोपुच्छा के लिए तो क्षपित या गुणित लेना, संयम की गुण श्रेणी अलग, अपूर्वकरण में आता है तो उसकी गुण श्रेणी अलग, और अनिवृत्ति के कारण जो गुण श्रेणी बनी थी वो अलग। हाँ, फिर भी उसके कारण जो द्रव्य दिया है वो समान है। संयम की अलग थी, अपूर्वकरण के पहले समय में जो थी वही गलितावशेष होते होते बाद में बची थी। अब यहाँ बाद में जो पहली स्थिति बनेगी ना, वहां की गुणश्रेणी अलग होगी, अपूर्वकरण की अलग होगी। अंतरकरण करने के बाद जिसका उदय है उसकी प्रथम स्थिति बनेगी, उसकी गुणश्रेणी अलग बनी जाएगी। हाँ, तो उसकी उसके लिए ये लिया, वो तो क्षपित गुणित में कोई डिफरेंस नहीं होगा।
वहाँ पे डिफरेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपकर्षण भागार से भाग के जो द्रव्य दिखता
है वहाँ तो मात्र परिणामों से ही आता है। कितना वहाँ भाग पहले 70 में कितना है उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये तो हमने बहुत पहले भी देखा था। परिणाम विशेष के कारण जो आता है वो तो समान है दोनों में। परिणामों की जहाँ समानता है वहाँ अपकर्षित द्रव्य भी समान होगा। हमने अनिवृत्तिकरण की बात देखी ना, वहाँ जो कुछ होता है पहले स्थिति कांड घात है, अनुभाग कांड घात है, सब में समानता है। अब ये विशेषार्थ अपना हो गया, इसी तथ्य को यहाँ विशेष रूप से स्पष्ट करके बतलाया है। आगे का सूत्र, जहन्नो संयमो असंख्येज्य गुण। पहले नंबर पर हमने क्या देखा था, कि अनुत्कृष्ट अजगन्य प्रदेश उदीर्णा स्तोक थी, उसके बाद जघन्य उदय असंख्यात गुणा कहा था, उसके बाद उत्कृष्ट उदय विशेष अधिक कहा था। अब यहाँ जघन्य संक्रम असंख्यात गुणा, अब यहाँ जो संक्रमण चल रहा है वो गुण संक्रमण चल रहा है यहाँ पर इस पोजीशन पर। अनिवृत्ति सॉरी अंतरकरण के पश्चात वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि गुण संक्रम के महात्म्यवश उत्कृष्ट उदय द्रव्य से जघन्य संक्रम द्रव्य असंख्यात गुणा है। गुण संक्रम के महात्म्यवश यानी गुण संक्रमण में ये जो असंख्यात गुणा संक्रमित होता है द्रव्य, तो उदय वाले द्रव्य से वो अधिक होता है, असंख्यात गुणा हो जाता है। शंका, जघन्य संक्रम द्रव्य के लाने के लिए उसका प्रमाण कैसे निकालेंगे? तो कहते डेढ़ गुणहानि प्रमाण, समय प्रबद्धों का अपकर्षण उत्कर्षण भागार, दो शास्त्र सागरोपम, नाना गुणहानियों की अन्योन्याभ्यस्त करना, अन्योन्याभ्यस्त राशि और गुण संक्रम भागार के परस्पर संवर्ग करने पर जो राशि उत्पन्न हो वह भागहार है, इसको समझेंगे बाद में। और उत्कृष्ट उदय द्रव्य लाने के लिए तो डेढ़ गुणहानि प्रमाण उत्कृष्ट समय प्रबद्धों का उत्कर्षण अपकर्षण से असंख्यात गुणा पल्लोकों का असंख्यात व भाग भागहार है। इसलिए नपुसक वेद के उत्कृष्ट उदय द्रव्य और जघन्य संक्रम द्रव्य इनमें असंख्यात गुणा हीनपना है या अधिकपना है स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होता। हाँ। देखो यहाँ क्या किया, संक्रम द्रव्य कैसे लाया उन्होंने, तो सत्ता में कभी भी देखो आप कितना द्रव्य है, तो डेढ़ गुणहानि गुणा समय प्रबद्ध। ये निषेक रचना जब होती है तो हमने देखा नीचे के निषेकों में परमाणु ऊपर थोड़े थोड़े कम कम होते चले, जहां जाके वो आधे हो जाते उतने निषेकों की संख्या को कहेंगे एक गुणहानि, उसको 1.5 टाइम्स कर देना तो हो जाएगी डेढ़ गुणहानि 1.5। उससे उस गुणहानि के प्रमाण से डेढ़ गुणहानि के प्रमाण से समय प्रबद्ध को गुणा करेंगे तो सत्ता वाला द्रव्य आएगा। तो यहाँ बात क्या हो रही थी, कितना द्रव्य संक्रमित होता है, तो वो टोटल जो द्रव्य है उसको किसी संख्या से भाग देंगे, तो कौन सी संख्या से भाग देंगे? तो यहाँ ऊपर तो हमने टोटल द्रव्य लिखा, ये पूरा टोटल द्रव्य डिवाइडेड बाय जो डिवीजन में जो संख्या होगी उसको हम कहेंगे भागहार। तो यहाँ कहते हैं उसका कौन कौन सा भागहार है, अपकर्षण उत्कर्षण भागहार, जितनी संख्या होती है उसको अपकर्षण भागार से भाग देके उतने परमाणु नीचे आते चले जाते, तो ये लिया। दूसरी 266 सागरों को, 266 सागरों को इसलिए लिया कि ऐसा जीव लिया है यहाँ पर कि जिसने सम्यक्त्व प्राप्त करके 266 सागरों तक रहा था, तो उसका कित 266 सागरों तक वेदक समय दृष्टि रहा, तो उतना कितना ही द्रव्य खिर गया है उसका, इसलिए उसको 266 सागरों उसको ले लिया। यानी एक समय में इतना आकर्षण होता है तो 266 सागरों मन कितना, तो उसको भी यहाँ लेना 266 सागरों। वो 266 सागर अब नाना गुणानियों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि, नाना गुणानियों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि इसकी जितनी एक गुणानी, दो गुणानी, तीन गुणानी, टोटल नंबर ऑफ गुणानियां हैं उसको नाना गुणानी कहते हैं। और जितने नाना गुणानी है उतनी बार दो लिखकर परस्पर गुणा करोगे करेंगे तो उसको अन्योन्य अभ्यस्त राशि कहते हैं। तो ये अन्योन्य अभ्यस्त राशि को भी यहाँ लिखना, अन्योन्य अभ्यस्त राशि। और गुण संक्रमण भागहार, गुण संक्रमण भागहार से जितना भाग देके जो द्रव्य आता है उतना संक्रमित होता है, तो ये गुण संक्रमण भागहार, इतनी संख्याओं को परस्पर गुणा करके जो संख्या आएगी वो यहाँ का भागहार है। संवर्ग करना, आपस में गुणा करना। ये तो शंकाकार पूछ रहा है, वो इसकी शंका है। अब कहते उदय का उत्कृष्ट द्रव्य लाने के लिए क्या है, उदय में कितना आएगा, तो कहते डेढ़ गुणहानि प्रमाण उत्कृष्ट समय प्रबद्धों का, ये फिर टोटल द्रव्य आया उसका भागहार क्या बता रहे हैं अभी, उत्कर्षण अपकर्षण से असंख्यात गुणा, ऐसा पल्लोपम के असंख्यात वे भाग भागहार है। द्रव्य कितना उदय में आएगा तो टोटल द्रव्य को पल्ले के असंख्यात भाग से भाग देकर जो भागहार उत्कर्षण अपकर्षण जो हमने अ लिखा था उससे असंख्यात गुणा है। इज इक्वल टू नहीं, देखो ये उत्कृष्ट समय प्रबद्धों का उत्कर्षण अपकर्षण से असंख्यात गुणा पल्लोपम का असंख्यात भाग भागहार है। ये भागहार उत्कर्षण अपकर्षण भागहार से असंख्यात गुणा है। पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण ही है, परंतु ये कितना है
पल्लोपम का
तो अपकर्षण उत्कर्षण भागहार से असंख्यात गुणा वाला है। हाँ, अपकर्षण भागहार छोटा है, ये यही तो शंकाकार की शंका है। इसलिए नपुसक वेद के उत्कृष्ट उदय द्रव्य और जघन्य संक्रम द्रव्य इनमें असंख्यात गुणाहीनपना है क्या अधिकपना है, उसकी शंका है। वहां तो कितने कितने भागहार ले लिए उसमें, तो यहाँ तो क्या कहा, जघन्य संक्रम का द्रव्य असंख्यात गुणा कहा, और वहां तो इतना भागहार बड़ा है अन्य, वो तो अपकर्षण उत्कर्षण भागहार 266 सागर फिर अन्य अभ्यस्त राशि और फिर उसका जो गुण संक्रमण भागहार उसका समाधान कर रहे। यहाँ इसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उदय द्रव्य के लाने के लिए जो उत्कर्षण अपकर्षण भागहार है उसमें प्रवेश कराए गए पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण गुणकार के महात्म्य का आश्रय लेने से पहले की अपेक्षा यह असंख्यात गुणा है यह सिद्ध हो जाता है। मैंने पहले उदय का द्रव्य लाने के लिए जो कुछ था उसको असंख्यात गुणा कर लिया यहाँ पर। तात्पर्य है कि विशेषात बता रहे कि जिस उपरीतन द्रव्य में, उपरीतन द्रव्य ने भी वहां जो कुछ द्वितीय स्थिति वाला जो द्रव्य पड़ा है उसमें उत्कर्षण अपकर्षण भागहार का भाग देने से लब्ध आवे उसे उदय में निक्षिप्त करता है, उस भागहार का पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण गुणकार से गुणा करने पर जो लब्ध आवे उससे उपरीतन द्रव्य को भाजित करने पर लब्ध द्रव्य का संक्रम होता है। इसलिए सिद्ध हुआ कि नपुसक वेद के उत्कृष्ट उदय द्रव्य से जघन्य संक्रम द्रव्य असंख्यात गुणा है।
ये संक्रम करने का भागार बड़ा बताया
तो वो और तो फिर उल्टा बता रहे हैं ना।
क्यों ऐसे बताए?
विशेषास्त्र में कुछ गड़बड़ है। जिस उपरीत द्रव्य उत्कृष्ट भागा देने लगता है उसे उदय में निक्षिप्त करता है, उस भागार का पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण गुणकार से गुणा करने पर जो लब्ध आवे उससे उपरीत द्रव्य को भाजित करने पर लब्ध द्रव्य का संक्रम होता है। इन्होंने जो स्टेटमेंट किया वो
रिवर्स
उल्टा रिवर्स सिद्ध होता है। विशेषार्थ में ही उल्टा सिद्ध हो रहा है।
ये उपरीतम स्थिति मीन्स तो प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति दोनों बताइए।
उदय द्रव्य से जघन्य नहीं नहीं नहीं, पर मूल सूत्र में उसको उदय से जघन्य संक्रम असंख्यात गुणा सिद्ध कर रहे हैं ना। 27 पृष्ठ पर उत्कृष्ट उदय द्रव्य विशेष अधिकाय बताया था 3 नंबर पर, और 28 पेज पर 4 नंबर पर बताया है कि जघन्य संक्रम द्रव्य असंख्यात गुणा है। उदय द्रव्य से संक्रम द्रव्य असंख्यात गुणा किया है, और विशेषार्थ में तो उसका कुछ अलग। उस भागार का क्यों कहा? विशेषार्थ की सेकंड लाइन, उस भागार का पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण गुणकार से गुणा करने पर जो लब्ध आवे उससे उपरीतन द्रव्य को भाजित करने पर लब्ध द्रव्य का संक्रम होता है।
ये उपरीतन द्रव्य में
द्वितीय स्थिति का उपरीतन द्रव्य ने वो सब ले लो, उदयावली के ऊपर का पूरा
लेना पड़ेगा ना।
हाँ ले लो ना। प्रथम स्थिति में कितने हैं ना अंतर्मूल प्रमाण जो कुछ है, पूरा भी ले लो, फर्क क्या पड़ेगा? संक्रमण भी वहाँ पर ही से ही होने वाला है और उदीर्णा भी वहीं से होने वाली है। संक्रमण करने के लिए और उदय करने के लिए भी उसी को भाग दे रहे हम। उदय द्रव्य से संक्रम द्रव्य अधिक बता रहे। उदय द्रव्य में तो प्रकृति गोपुच्छा को भी लिया था, और यहाँ संक्रमित होने वाला द्रव्य जघन्य संक्रम द्रव्य भी असंख्यात गुणा कहा, उसको तो गुण संक्रम के महात्म्य से ही बताया उसको। यानी गुण संक्रम भागार से वो भाग देने पर जो संख्या आएगी भागार को ये गुणा नहीं करना है एक्चुअली।
भागार तो भाग देना है, ऐसे
भाग देकर जो संख्या आई उसको गुणा करेंगे। हाँ। शायद
ये ऊपर कुछ है
अभी जो कुछ है हम आगे बढ़ेंगे। ये जो गुण संक्रमण का जो गुणकार है और वो भी बढ़ता जाता है ना, गुण संक्रम का।
हाँ, गुण का प्रति समय
उसको लेना है। मरुं तो यहाँ जगह नहीं संक्रम द्रव्य लिया।
हाँ।
पहले समय में वो जो कुछ है वो उससे उदय से भी असंख्यात गुना है। ये बात
दोनों का भागा में जो प्रमाण बताए ना उसमें कुछ गड़बड़े
नहीं, भागा रहने उसकी जो संख्या आएगी उसको असंख्यात गुना करना है ऐसा कुछ है।
नहीं पर यहाँ पे तो
यहाँ देखो देखो ऊपर तो हमने कितने कितने से भाग दिया था उसको उत्कृष्ट उदय द्रव्य लाने के लिए। हाँ जघन्य संक्रम द्रव्य लाने के लिए अमुक अमुक का भागार किया और उत्कृष्ट उदय लाने के लिए उसका प्रश्न यही था ना। अपकर्षण उत्कर्षण भागार छोटा है उससे असंख्यात गुणा पल्ले का असंख्यात भाग वाला भागार है। तो उसका प्रश्न यही था। तो उदय द्रव्य अधिक होना चाहिए, जघन्य संक्रम द्रव्य का आप अधिक क्यों कहते हो, ये प्रश्न था शंकाकर का। नहीं नहीं देखो यहाँ क्या बता रहे, समाधान पढ़ना, विशेषार्थ को भूल जाओ। शंकाकार ने जो शंका पूछी थी
उदय द्रव्य लाने के लिए
कि उदय द्रव्य लाने के लिए क्या किया कि उत्कर्षण अपकर्षण से असंख्यात गुना पल्लोकम के असंख्यात भाग प्रमाण भागहार है, इतना उसने बताया था। यहाँ उदय का द्रव्य लाने के लिए भागहार इतना बड़ा ही बताया था। अब वहाँ कहते उदय द्रव्य लाने के लिए समाधान,
अच्छा
उदय द्रव्य लाने के लिए जो उत्कर्षण अपकर्षण भागार है उसमें प्रवेश कराए गए पल्लोपम के असंख्यात्वे भाग प्रमाण गुणकार के महात्म्य का आश्रय लेने से, यानी यहाँ उदय द्रव्य कम हो जाता है। उदय द्रव्य लाने के लिए जो अपकर्षण भागार है उसको पल्ले के असंख्यात्वे भाग गुणा किया,
यहाँ पे जो विशेषार्थ है ना उस
विशेषार्थ में वो संक्रम की गड़बड़ कर दी। हाँ यानी दोनों जगह द्रव्य का उदय होता है ऐसा ही लेना है, संक्रम की बात ही नहीं वहां पर। यहाँ जो पहले उदय होता था तो मात्र अपकर्षण उत्कर्षण भागार से भाग देने पर जो होता था वो होता था। अब वो भागार क्या हुआ, वो असंख्यात गुना हुआ है।
तो द्रव्य कम आएगा ना,
तो उदय वाला कम है संक्रम वाला ज्यादा है। यानी ये अपना समाधान, क्योंकि ऊपर के सभी भागहारों का हमें प्रमाण मालूम नहीं ना। फिर भी अभी हम आगे बढ़ेंगे। जघन्य संक्रम असंख्यात गुणा ये क्या है, प्रदेश विभक्ति करके बहुत दिन हुए ना।
नहीं पर यहाँ पे स्पष्टीकरण बराबर नहीं है। नहीं तो
हाँ, ये विशेषार्थ में कुछ गड़बड़ है। अब उससे आगे का हम पढ़ेंगे 5 नंबर पर, इग्नोर करेंगे। पहले में पहले हमने प्रदेश उदीर्णा लिया अनुत्कृष्ट अजघन्य, वो कम ली थी
उदय,
उससे जघन्य उदय असंख्यात गुना, उससे उत्कृष्ट उदय विशेष अधिक और उससे जघन्य संक्रम असंख्यात गुना। अब आगे देखेंगे जहन्नयम उवसामिज्यदि असंख्यज्य गुणम, उपशम कराया गया जघन्य द्रव्य असंख्यात गुणा है। क्योंकि परस्थान में संक्रम कराए गए द्रव्य से स्वस्थान में उपशम कराया गया द्रव्य सर्वत्र असंख्यात गुणा उपलब्ध होता है, यानी पर प्रकृति रूप जो संक्रमित होता है उससे अपने रूप से ही रहकर जो उपशमित होता है द्रव्य वो असंख्यात गुना है। जघन्य की बात की ना, कहीं पर किसी भी समय में ऐसा ही होगा ना। और यह स्वीकार करना बिना कारण के नहीं है, क्योंकि यहाँ यही सूत्र कारण होकर प्रवृत्त हुआ है, वो सूत्र ही उसका कारण है कहते हैं। तात्पर्य है कि जघन्य संक्रम द्रव्य से जघन्य उपशम कराया गया द्रव्य असंख्यात गुणा है, इसकी पुष्टि इसी सूत्र से होती है। कारण क्या है, तो ये सूत्र ही उसका कारण है। आगे कहते हैं जघन्यम संतकम्मम असंख्यज्य गुणम, जघन्य सत्कर्म सत्कर्म का अर्थ है सत्ता में पड़े हुए असंख्यात गुणा है, क्योंकि प्रथम समय में नपुसक वेद के उपशमाने से उपशमाया जाने वाला जो प्रदेश पुंज प्राप्त होता है वह जघन्य सत्कर्म के असंख्यात वे भाग प्रमाण मात्र है। प्रत्येक समय में कितना द्रव्य उपशमित किया जाता है, तो जो सत्ता में उसका असंख्यात भाग, पहले समय में तो उतना ही हुआ ना, पहले समय में जितना उपशमाया है, दूसरे समय में असंख्यात गुना, तीसरे समय में असंख्यात गुना, चौथे समय में उससे भी असंख्यात गुना, तो जघन्य उपशम कब पाया जाएगा, पहले समय में। वो कितना है, तो टोटल द्रव्य का असंख्यात भाग है, इसलिए उस उपशमित द्रव्य से टोटल द्रव्य कितना है, तो असंख्यात गुना है। अब कहते उपकस्यम संकामिज्यदि असंख्यज गुण। अब जघन्य उपशमित द्रव्य से उत्कृष्ट संक्रमित द्रव्य लिया, संक्रम कराया गया उत्कृष्ट द्रव्य असंख्यात गुण है।
ये संक्रम भी इसे लेना, पहले समय में जो खाली संक्रम होती है
गुण संक्रमण है ना, वो भी गुणित गुणित प्रमाण में
बहुभाग लास्ट समय में होना,
वह जैसे संक्रम कराया गया उत्कृष्ट द्रव्य असंख्यात गुण है, ऊपर पड़ा था ना उत्कृष्ट संक्रम जनती असंख्यात गुण, उसको अभी बता रहे हैं। वह जैसे क्षपित कर्मांशिक लक्षण से आकर, अभी क्षपित कर्मांशिक के लिए बहुत हमने पहले बहुत विस्तार से देखा था कि असंख्यात बार सम्यक को प्राप्त किया, प्रथम उपशम सम्यक को प्राप्त किया उसने, पहले के असंख्यात विभाग बार बहुत बार है ना, और फिर क्या किया अनंतानुबंधी की विसंयोजना बहुत बार की, वो भी असंख्यात बार की, पंचम गुणस्थान प्राप्त किया वो भी असंख्यात बार प्राप्त किया, बहुत बार संयम धारण किया, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा कितनी बार, चार बार, अच्छा चार बार, तो उसने कितना ही द्रव्य कम कर दिया ना, और फिर जाके केंद्रीय में जन्मा, वहाँ भी उसके जो कोई हत समस्तिक हुआ सिद्धि कांड घात हुए उसने बहुत सारा कर्म वहाँ पर भी चला गया, और फिर ऐसा जो आया है उसको क्षपित कर्मांशिक कहते हैं, क्षपित कर्मांशिक रूप से आकर और तीन पल्योपम अधिक दो 66 सागरोपम काल तक परिभ्रमण करके, यानी फिर भी उसने सम्यक तो प्राप्त किया है, दो 66 सागर तक उसके उसमें रहा है सम्यक के साथ, जो अनिवृत्तिकरण जीव उपशम स्वभाव से परिणत होता है, वो चार बार नहीं कराया ना उसको पहले, अभी फिर उपशम श्रेणी चढ़ाना है ना उसके विवक्षित स्थान में जघन्य सत्कर्म होता है, सत्कर्म की बात है, और यह उत्कृष्ट सत्कर्म के असंख्यात वे भाग प्रमाण होता है, उत्कृष्ट सत्कर्म के असंख्यात विभाग क्यों, तो कहता है क्योंकि योग गुणकार से गुणित तीन पल्योपम अधिक दो 66 सागरोपमान सागरोपम प्रमाण अन्योन्य अभ्यस्त राशि तथा अपकर्षण उत्कर्षण भागहार से उत्कृष्ट द्रव्य के अपवर्तित करने पर जघन्य द्रव्य का आगमन देखा जाता है।
ये तीन पल्ले पंप क्यों लिया है, दो 66 सागर और वो तो सभी समझ में आ गए, तीन पल्ले पंप क्यों लिया है,
तीन पल्ले में नपुसक द्रव्य का, नपुसक वेद का द्रव्य है,
अच्छा वहाँ पे
क्या होगा उसका,
वहाँ पे बंदी नहीं होगा नपुसक वेद का, इसीलिए तीन
और उदय है क्या,
नहीं उदय भी नहीं है,
तो उतने काल तक उसका पर्व से तो होकर निकल जाएगा ना, उतना उसका द्रव्यहीन हो गया, और दो 66 सागर तक रहा
समय दृष्टि,
वहाँ भी समय दृष्टि रहा है, समय दृष्टि रहा तो उसकी भी उतने तो एक एक निशे गल के निकल गया है, यानी वो उसके द्रव्य मिनिमम हुआ है नपुसक वेद का। तो कहते हैं कि जो उत्कृष्ट द्रव्य है वो कब लाएंगे हम? गुणित कर्मोशिक से लाया था उसको, और वो दो शास्त्र सागर तक नहीं रहा ना।
सातवें नरक से आके तुरंत
सातवें नरक से आया है, मान लेते हैं कि नहीं, एक दो तीन
दिव्यंश
के भाव किए और श्रेणी चढ़ने के
हुआ,
तो उसका तो उत्कृष्ट द्रव्य है। और इसने तो इतने दो शास्त्र सागर तक और तीन पल्ले में उसने तो बहुत सारा खिपाया है, तो इसका द्रव्य उसके असंख्यात भाग प्रमाण। इसलिए दो शास्त्र सागर में उसने जितना जितना कम किया है उससे उसको भाग दिया है। अब उत्कृष्ट सत्कर्म में से संक्रमित होने वाला उत्कृष्ट संक्रम द्रव्य भी उत्कृष्ट सत्कर्म के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही होता है। कभी भी संक्रमण का द्रव्य पूरा का पूरा नहीं है, क्योंकि पहली फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली संक्रमण जो चल रहा है तो लास्ट में भी उत्कृष्ट हो जाएगा मान लेते हैं, क्योंकि गुण संक्रम भागहार से उत्कृष्ट द्रव्य के भाजित करने पर प्रकृत द्रव्य की प्राप्ति देखी जाती है। हमेशा टोटल द्रव्य को गुण संक्रमण भागहार से भाग देंगे तो संक्रमित होने वाले द्रव्य का प्रमाण मिलेगा। तो गुण संक्रमण का जो प्रमाण यथायोग्य असंख्यात है, इसलिए असंख्यातवा भाग संक्रमित होता है ऐसा कहेंगे। तो द्रव्य उत्कृष्ट है तो उसका असंख्यातवा भाग उत्कृष्ट संक्रम भी लेंगे तो उत्कृष्ट द्रव्य के भी असंख्यातवे भाग प्रमाण होगा। भागहार से भाग देकर उतना होता है। यहां अधस्तन राशि से उपरिम राशि के भाजित करने पर योग गुणकार से गुणित तीन पल्ल्योपम अधिक दो छासर सागरोपम की अन्योन्य व्यस्य राशि से असंख्यात गुणा गुणकार आता है। यह अधस्तन और उपरिम क्या है अश्विन भाई?
ये तो गुण संक्रमण द्वारा द्रव्य जो चगन्य और उत्कृष्ट हुआ उसका दोनों का भाग करेंगे तो इतना ये आएगा।
बराबर, देखो हम क्या कहते हैं कि उत्कृष्ट द्रव्य असंख्यात गुणा है।
कितना असंख्यात?
तो यहाँ दो बातें बताई, जघन्य द्रव्य कैसे निकाला। तो देखो ऊपर से तीसरी लाइन में विवक्षित स्थान में जघन्य सत्कर्म होता है, वो कैसे लाया? उत्कृष्ट सत्कर्म के असंख्यात विभाग प्रमाण है, क्योंकि योग गुणकार से गुणित तीन पल्यपन वगैरह 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 इतना सब पूरा लिया। और उत्कृष्ट संक्रम कैसे लिया? तो उत्कृष्ट द्रव्य को गुण संक्रम भागहार से भाग दिया। तो यहाँ कहते उत्कृष्ट द्रव्य को लाने के लिए जो कुछ है वो ऊपर लिखो और नीचे जघन्य संक्रम द्रव्य लाने के लिए,
तो
उसको भाग दिया तो कितना आएगा? तो असंख्यात आएगा। कितना असंख्यात आएगा? योग गुणकार मल्टीप्लाइड बाय तीन पल्ल्योपम अधिक दो छासर सागरोपम की अन्योन्य व्यस्य राशि। नहीं, तीन पल्ल्योपम अधिक दो छासर सागर, इतना जो काल बीत गया उसमें जो निषेक एक एक खिर गया। देखो देखो अभी कितने निषेक खिर गए, तो तीन पल्ले और दो छासर सागर में जितने निषेक एक एक समय में पाए जाते हैं, एक एक समय गल गया है तो इतने निषेक खिर गए। तो इतने निषेक खिर गए ने जितना पहले निषेक रचना में जितना द्रव्य था, फिर आधा हुआ, फिर आधा हुआ, फिर आधा हुआ, फिर आधा हुआ, आधा हुआ, आधा हुआ, आधा हुआ, आधा हुआ, तो कितनी बार गुणहानियां होगी? तो मान लेते 6 बार हुई, तो इसकी अन्योन्य व्यस्य राशि कितनी होगी? तो 6 बार 2 को आपस में गुणा करो,
2 गुना 2 गुना 2,
तो 6 बार करेंगे तो कितना होगा?
64
हो जाएगा ना।
64
तीन बार करते तो 8 होता है, 8 गुना 8 64 होगा। तो 64 टाइम्स ये आधा कम होगा,
कितना निकाल दिया? इतना 8 किया,
तो उसको डायरेक्ट उसके अन्य वैशिष्ट राशि से भाग देंगे तो इतना द्रव्य तो निकल गया ना इसमें से,
यहाँ पे गुणा कर बताया
तो इसलिए उसको अन्य व्यस्य राशि से भाग दिया था हमने। दो छासर सागर प्लस तीन पल्ल्योपम के जितने समय है उतने में इनकी कितनी गुणहानियां हुई, यानी उसमें कितने निषेक गए? तो कितने निषेक, तो उसके असंख्यात निषेक गिनने पड़ेंगे, परंतु उसमें द्रव्य कितना घटा तो एक बार आधा हुआ, आधे का आधा हुआ, आधे का आधा हुआ, आधे का आधा हुआ, छह बार आधा 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 हुआ, यानी डायरेक्ट 64 टाइम्स उसका उसके
कम हो
गया। तो डिवाइडेड बाय 64 करेंगे हम, इसका अर्थ अन्य व्यस्त राशि से भाग दिया हमने डायरेक्ट, इतना काल बीत जाने पर टोटल द्रव्य में से इतना खलास हो गया। तो टोटल द्रव्य को हम उससे भाग देंगे अन्य व्यस्त राशि से, और वो भी योग गुणकार के
वापस वहाँ पे योग भी
योग गुणकार इसलिए लिया, जहाँ योग ज्यादा है वहाँ समय प्रबद्ध अधिक है, तो जहाँ योग का मैक्सिमम गुणकार लेना असंख्यात वाला, तो जहाँ योग असंख्यात गुणा है वहाँ नंबर ऑफ परमाणु भी असंख्यात गुणा हो जाते हैं, यानी समय प्रबद्ध ही इतना बड़ा हो जाता है, असंख्यात गुणा हो जाता
है, असंख्यात ऊपर जाएगा।
क्योंकि हमें उत्कृष्ट बताया ना, संक्रमण कराया गया द्रव्य उत्कृष्ट बताना है, इसलिए उसको ऐसा वहाँ जो लिया था हमने जघन्य संक्रम के लिए, तो उसने तो इतना काल सम्यक्त्व में पहले ही क्षपित से आया था और सम्यक्त्व में इतना काल बिताया उसने, तो उसके इतने निशे गल गए हैं नपुसक वेद,
उतने ज्यादा हो जाएंगे।
स्थिति में तो ठीक ना, अंत कोड़ा कोड़ी जो कुछ यथायोग्य स्थिति तो उतनी रहेगी। हाँ, अभी जब उसने उपशम श्रेणी शुरू की है तो स्थिति तो उसने घटाई है, स्थिति में कुछ नहीं। अनिवृत्तिकरण के शुरुआत में जब स्थिति समान हो जाती है, क्योंकि ये तो अंतर करने के बाद की बात है, स्थिति सबकी समान होगी, पहले स्थिति अलग अलग थी, परंतु जब वो अनिवृत्तिकरण में पहला ही स्थिति कांड घात हुआ तो स्थिति समान हो गई सबकी। हाँ, सत्ता में जो है प्रदेशों की बात है ना, संख्यात गुना का डिफरेंस होगा उसका। हाँ, तो ये संक्रमण कराया गया द्रव्य क्यों असंख्यात गुना है, तो उसका हमने कारण अभी यहाँ पर देखा।
यहाँ पे ये योग गुणा का श्रेणी का असंख्यात भाग ही लेना पड़ेगा ना।
हाँ, असंख्यात कहो ना, अभी अभी और उसको श्रेणी को लाओगे तो और कंफ्यूजन होगा। जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण जो कोई यथायोग्य असंख्यात गुणा होता वो तो वहाँ तो पल्ले का असंख्यात भाग गुणा होता है, श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण तो योग के स्थान है।
हाँ,
और उसके जो 84 कुछ अलग भेद बताए हैं केंद्र से पंचेंद्र तक के, उसमें से हर बार पल्ले के असंख्यात भाग गुणा वाला लिया है, अभी संगी पंचेंद्रियों में ही लेना है, जगन्य योग स्थान से उत्कृष्ट योग स्थान तक हर बार पल्ले के असंख्यात भाग गुणा, पल्ले के असंख्यात भाग गुणा, पल्ले के असंख्यात भाग गुणा, तो यथायोग्य योग गुणकार कहना उसको ठीक है, क्योंकि आप और कुछ नया प्रमाण लाओगे तो उसमें और कंफ्यूजन बढ़ेगा, है ना।
नहीं नहीं,
योग गुणकार पल्ले का असंख्यात भाग गुणा है, योग के स्थान कितने हैं तो श्रेणी के असंख्यात भाग। इतना ही इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जघन्य सत्कर्म से संक्रमित कराया गया उत्कृष्ट द्रव्य असंख्यात गुना है, यानी ना जघन्य सत्कर्म उससे असंख्यात गुना है, और 7 नंबर पर संक्रमित कराया गया उत्कृष्ट द्रव्य असंख्यात गुना है, वो जघन्य सत्कर्म में से नहीं संक्रमित हुआ है, वो उत्कृष्ट सत्कर्म में से लिया है, उसके आगे देखेंगे अभी। उक्कसगम उवसामिज्यदि असंख्येज्य गुणम्, जघन्य उपशम कराया गया हमने 5 नंबर पर देखा था, उपशम कराया गया जघन्य द्रव्य, उसके बाद हमने जघन्य सत्कर्म देखा असंख्यात गुणा, उसके बाद उत्कृष्ट संक्रम असंख्यात गुणा देखा, अब अभी उपशम कराया गया उत्कृष्ट द्रव्य उससे भी असंख्यात गुणा है, क्योंकि संक्रम कराने वाले के और उपशम कराने वाले के दोनों ही उत्कृष्ट सत्कर्म के असंख्यात भाग प्रमाण ही है, किंतु उपशमाए जाने वाले द्रव्य को असंख्यात भूभाग करके वहां एक भाग मात्र द्रव्य पर प्रकृतियों में संक्रमित कराया जाकर बहुभाग स्वस्थान में ही उपशमाया जाता है। इस कारण पूर्व के द्रव्य से यह असंख्यात गुणा कहा है। एट एनी गिवन टाइम, एनी गिवन समय उत्कृष्ट उपशम कब होगा? अंतिम समय में। उत्कृष्ट संक्रम भी कब होगा? अंतिम समय में। तो जितना द्रव्य उपशमित और संक्रमित होता है वो टोटल द्रव्य के असंख्यात विभाग दोनों को मिलकर हम पहले कहेंगे। उपशमित होने वाला और संक्रमित होने वाले की टोटल जितनी है वो कितनी है? तो टोटल द्रव्य से असंख्यात विभाग, और उसमें जो पार्ट हमने निकाला है उसमें से असंख्यात बहुभाग तो उपशमाया जाता है और असंख्यातवा भाग संक्रमित होता है। तो इसलिए संक्रमित होने वाले द्रव्य से उपशमित होने वाला द्रव्य असंख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट संक्रम से उत्कृष्ट उपशम द्रव्य भी असंख्यात गुणा होगा।
यदि ये विवेचन कितना होगा? एक छठे नंबर पे हमने जगदीय सत्कर्म देखा, सातवें नंबर पे उत्कृष्ट संक्रम देखा, तो सत्कर्म से भी ये जो उत्कृष्ट संक्रम
जगन्य सत्कर्म से हाँ। अभी उत्कृष्ट सत्कर्म नहीं लिया है,
नहीं लिया है, पर जगदीय सत्कर्म से भी उत्कृष्ट संक्रम असंख्यात गुणा,
वही तो बता रहे हैं ना,
और उससे उत्कृष्ट उपशम असंख्यात गुणा।
हाँ, संक्रम से उपशम असंख्यात गुणा होता ही है।
तो सो कोई जीव का जितना प्रदेश जगदीय सत्कर्म है उससे वो
संक्रमित और हाँ, किसी अन्य जीव के हाँ, उपशमित और संक्रमित होने वाला द्रव्य असंख्यात गुणा हो सकता है। हाँ, आपको बहुत चिंता होती है। उपकस्य हम संत कम्मम असंख्यज गुणम। अभी उत्कृष्ट सत्कर्म यहाँ पर आया।
हाँ,
उत्कृष्ट सत्कर्म असंख्यात गुणा है। देखो उत्कृष्ट उत्कृष्ट की बात नहीं है तो संक्रम से उपशम असंख्यात गुणा, उससे सत्कर्म असंख्यात। ये उत्कृष्ट सत्कर्म असंख्यात गुणा है क्योंकि पूर्व में कही गई समस्त राशियां इसके असंख्यात भाग प्रमाण है। समस्त राशि अभी कोई भी ले लो, क्योंकि पहले की सभी असंख्यात गुणा करके यहाँ तक आ गए, तो इसका नंबर अभी हमने 9 नंबर का दिया है, तो इससे पहले के 8 राशियां इसके असंख्यात भाग प्रमाण है। यहाँ पर गुणकार यानी उपशम से ये उत्कृष्ट सत्कर्म असंख्यात गुणा कहा है, उसका गुणकार गुण संक्रम भागार से असंख्यात गुणाहीन पल्यपुम के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। असंख्यात वे करना क्या हुआ है? यानी पल्ले के असंख्यात वे भाग से असंख्यात गुणा ऐसा गुण संक्रमण भागार। गुणकार की बात है, कितना गुणकार है तो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण। वो किससे छोटा बड़ा है उसको अगर हम गौण भी करेंगे। प्रकृत में यह अल्प बहुत हुआ, नपुसक वेद के प्रदेश पुंज को अधिकृत करके प्ररूपित किया है, इसका ज्ञान कराने के लिए आगे सूत्र कहते हैं। एदम सवम अंतर दुसमय कदे नवसे वेद पदेशग्गस्य अपावहुम। सब अंतर कर चुकने के दूसरे समय में होने वाले, एक समय में तो अंतर पूरा हुआ, दूसरे समय में ये बात हो रही है। नपुसक वेद संबंधी प्रदेश कुंज का यह अल्पभूतव है, क्योंकि नपुसक ऐसा अगर नहीं मानेंगे तो ये दो छासर सागर घुमाया। अब यदि पुरुष वेद का होता उसकी बात करेंगे तो उसमें तो नया बंध भी हो रहा था, उसमें तो और ग्रहण भी किया है, यहाँ उसने छिपाया है, उसकी अपेक्षा यह अल्पभूत तो हुआ है। इसलिए एक एक प्रकृति की बात अलग अलग बताएंगे अल्पभूत में। ये अल्पभूत नपुसक वेद के बारे में घटित हुआ क्योंकि तीन पल्ले में रखा बहुभूमि में, वहां नपुसक वेद का उदय भी नहीं था, बंध भी नहीं था, तो जो कुछ था वो खिरके जाने वाला था वगैरह वगैरह। यह सूत्र गतार्थ है, पहले भी बताया था अंतर करने के दूसरे ही समय में जो नपुसक वेद की उपशमना शुरू करता है उसमें अल्पभूत उन्होंने बताया था, लास्ट में फिर वही दोहराया है उन्होंने। अब आगे बताते, इत्थि वेदस्सवी निरवयवम एदम अप्पा बहुवम अणुगंतव्यम। अणुगंतव्य में वैसा ही समझना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इसका हिंदी देखेंगे हम बाद में। अठ कषाय छन्नो कषायाणम उदय उदीर्णम च मुत्तुन एवं चैव वत्तव्यम। वो वत्तव्यम हुआ है, वत्तव्यम यानी वक्तव्य। पुरी सवेद चतुसंजलनानम च जानिदून नेदव्यम। नवरी बंद पदस्य तत्थ सौवत्थोवत्तम दत्तव्यम। यानी सबसे कम में उन्होंने बंद लेना, क्योंकि जिसका बंद हो रहा है उसको वहां बंद पद भी उसमें डालना। अभी यहाँ हमने कहाँ से शुरू किया था, अल्प बहुत्व में, प्रदेश अल्प बहुत्व में, हाँ, वो जघन्य अनुत्कृष्ट अजघन्य प्रदेश उदीर्णा से शुरू किया था। नपुसक वेद का यहाँ बंधन नहीं है इसलिए। परंतु जिन प्रकृतियों का बंध है, पुरुष वेद संज्वलन, उनका सब बंध सबसे कम कहेंगे, उसके आगे आगे के अल्प बहुत्व कहेंगे। अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे और ख्याल आएगा। देखो स्त्री वेद का भी यह सब पूरा अल्प बहुत्व जानना चाहिए। आठ कषाय और छह नौ कषायों का भी उदय और उदीर्णा को छोड़कर, हाँ, उसकी जब उपशमना शुरू होगी तब जाके उसकी बात करेंगे, उसका समय अलग होगा। परंतु अल्प वो तो उसमें उपशमित कितने होता है, सत्कर्म कितना है उसमें, ये ही हो, क्योंकि इसका भी बंध तो है ही नहीं है।
पर श्रीवेद में जो ये अभी अपने गुणकार तीन पल्लिया कम जो एड किया था वो नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि तीन पल्लिया कम
तीन पल्ले में उसका उदय भी हो सकता है। तीन पल्ले में उदय है परंतु
वो तो साई
वो ईशान वाला तो नपुसक वेद का लिया था। श्रीवेद के लिए तो उल्टा तीन पल्ले में उसने मैक्सिमम द्रव्य ग्रहण किया था। अभी इसमें जो प्रदेशों में वेरिएशन होगा उसकी बात तो उन्होंने नहीं बताई है। अल्प बहुत वो ऐसा ही होगा, इतना ही बताया। नपुसक वेद के साथ कंपेयर मत करो उसको,
वहाँ पे गुणकर का
उसका अपना अल्प बहुत वो क्या है, इसका भी बंद नहीं है, तो उसकी भी अजगण्य अनुत्कृष्ट उदीर्णा सबसे थोड़ी होगी वगैरह वगैरह आगे चलेगा। हाँ, उसका अपना प्रपोर्शन अल्प बहुत वो यही कथन यही रहेगा उसके लिए भी। आठ कषाय और छह नौ कषायों का भी उदय और उदीर्णा को छोड़कर इसी प्रकार अल्प बहुत्व कहना चाहिए। नपुसक वेद में और स्त्री वेद में तो उदय उदीर्णा भी लिए, क्योंकि नपुसक वेद सही चढ़ने वाले की वहां बात की, यहाँ स्त्री वेद सही चढ़ने वाले की बात की है, तो वहां भी वो जघन्य जो उदय है, उदीर्णा है, जो संक्रमण है, वो सब घटित होगा।
इसका तो उदय उदीर्णा है।
अब कहते हैं आठ कषायों का जो उपशम होता है कौन से, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, उसका तो उदय है ही नहीं,
उदीर्णा भी नहीं,
क्योंकि अप्रत्याख्यान का उदय कहां मिटा, उदय नहीं रहा अप्रत्याख्यान का पांचवे
में,
चौथे में उदय है, उदय विच्छुति हुई, कहां नहीं रहा पूछा मैंने, पांचवे से नहीं है। और
प्रत्याख्यान
पांचवे में है परंतु छठे से आगे नहीं है, उसका उदय नहीं है, परंतु सत्ता में तो है, नवे गुणस्थान में तो उनका उदय होने का सवाल ही नहीं है, सत्ता में पड़े हैं। छह नौ कषायों का भी उदय नहीं है, क्यों, उसकी भी उदय विच्छुत्ति कहाँ हुई, तो आठवें में, आठवें तक है, नौवे से पहले भाग से उसका उदय नहीं है। तो ये ऐसी प्रकृतियां हैं कि जिनका उदय ही नहीं है, तो अल्प बहुत्व में उसका उदय और उदीर्णा को छोड़ देंगे, बंध का तो सवाल ही नहीं है इनके ख्याल में, बात बंद भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ जो बताए वहां भी बंद की बात नहीं आई थी नपुसक वेद में, परंतु उदय उदीर्णा की तो बात आई थी, इसलिए उसको भी छोड़ देना, तो क्या रह जाएगा, उपशम रह जाएगा, संक्रम रह जाएगा और सत्व रह जाएगा।
छह पॉइंट हो जाएगा ना,
जघन्य उत्कृष्ट, जघन्य उत्कृष्ट लगाएंगे तो वो और कम हो जाएंगे। तो इसी प्रकार अल्पभूतव कहना चाहिए। देखो देखो मैं आपको जरा बताती हूँ, निकालो
हमने, में
सुना सुना हमने नौ में क्या क्या देखा था, देखो
उदीर्णा देखी थी अनुत्कृष्ट,
सुनो लोगों को देखने दो, 26 पेज पर नीचे का पैराग्राफ, पहले हमने उदीर्णा देखी थी, मिली उसमें जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं था, अजघन्य अनुत्कृष्ट कह दी थी, यानी उदीर्ण वाले को लिया। उसके बाद जघन्य उदय उत्कृष्ट उदय लिए 27 पेज पर, उसके बाद आगे आगे आना 28 पर जघन्य संक्रम, फिर जघन्य उपशम और जघन्य सत्कर्मा। पहले कौन सा लिया था? उदीर्णा ली थी, उसमें जघन्य उत्कृष्ट नहीं था तो अजघन्य अनुत्कृष्ट कहा। फिर उसके बाद जघन्य उदय उत्कृष्ट उदय ले लिए, यानी उदय दोनों मिटा दिए। फिर संक्रम में जघन्य में क्या लिया? जघन्य संक्रम, जघन्य उपशम और जघन्य सत्कर्म, तीन की एक साथ जोड़ी लगाए। उसके बाद उत्कृष्ट संक्रम, उत्कृष्ट उपशम और उत्कृष्ट सत्कर्म। ख्याल में आई बात? उदीर्णा में एक ही लिया, अनुत्कृष्ट अजघन्य। उदय में जघन्य उत्कृष्ट लिए, दो तीन हो गए अभी, यानी एक उदीर्णा दो उदय लिए। और फिर जघन्य संक्रम, जघन्य उपशम और जघन्य सत्कर्म। फिर उत्कृष्ट संक्रम, उत्कृष्ट उपशम और उत्कृष्ट सत्कर्म। ये अपना अल्पबोध हुआ। तो कहते ऐसा ही अल्पबोधत्व त्रिवेद में देखा, आठ कषाय छह नौ कषाय में क्या नहीं लिया, उदय और उदीर्णा पहले तीन पॉइंट्स छोड़ दिए। तो जघन्य में तीन लगाए, संक्रम उपशम सत्कर्म, और यहाँ पर उत्कृष्ट संक्रम उपशम और सत्कर्म। तो इसी प्रकार इसको छोड़कर इसी प्रकार का अर्थ क्या होता है?
छह पद हो जाएंगे।
हाँ, जघन्य में तीन
और उत्कृष्ट,
जघन्य में संक्रम उपशम और सत्कर्म, फिर उत्कृष्ट में वैसे ही तीन, संक्रम उपशम और सत्कर्म, चार पांच और छह, ये उनका अल्पभूत्व होगा। अब कहते हैं पुरुष वेद और चार संज्वलन का जानकर कहना चाहिए, जानकर कहना चाहिए, क्योंकि इनका बंध भी है,
उदीर्णा भी है,
तो उसको भी यहाँ लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पुरुष वेद और चार संज्वलनों के अल्पभूत्व में बंध पद का सबसे स्तोक पना जानना चाहिए। अब बंध में जगन्य उत्कृष्ट लेना कि नहीं लेना मंजू बहन? बंध में जगन्य उत्कृष्ट लेना कि नहीं लेना? बंध है ना, अनिवृत्ति करण में बंध है पुरुष वेद और चार संज्वलन का। यहाँ क्या लिखा? यहाँ हमने नौ पद लिए थे, वैसे पद तो हमने चार ही लिए थे, उदीर्णा का लिया, उदय का लिया, संक्रम का लिया और सत्कर्म का लिया। यहाँ कहते बंध का भी पद ले लो, तो बंध में भी जघन्य उत्कृष्ट करना कि नहीं करना, ये मेरा सवाल है। क्यों नहीं करना? उसमें भेद नहीं है, बंध अनिवृत्तिकरण परिणाम है।
नहीं, पर वहाँ पे योग की अपेक्षा भी वेरिएशन तो हो जाएगा ना, जघन्य और उत्कृष्ट।
अच्छा, यहाँ प्रदेश की बात चल रही है, प्रदेश की बात चल रही है। प्रदेश में जघन्य अल्प, वो तो नवम नवक में बंध पड़ेगा, फर्क पड़ेगा किस
नहीं, 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 योग की अपेक्षा जो बंध होगा वो जघन्य और उत्कृष्ट हो जाएगा।
हाँ, बंध में भी पड़ेगा।
हाँ, और यहाँ पे बंध का सब
प्रदेश, प्रदेश की बात, बहुत से प्रदेशों की बात है ना। प्रदेश में जघन्य उत्कृष्ट हो सकते योग की अपेक्षा,
और ये बंध सबसे स्टोक पता है जघन्य बंध।
हाँ,
तो उदीर्णा उससे ज्यादा हो जाएगी, अनुत्कृष्ट जघन्य
अभी क्या क्या,
तो यहाँ पे सबसे स्टोक पना बंध में चलना चाहिए, तो उदीर्णा सेकंड में आ जाएगी।
हाँ, बाकी तो अल्पभो तो वैसे ही रखा ना उन्होंने, आगे का अल्पभो तो वैसे ही रखा है। पहला पद केवल बंध का ले लेना, पहले हमने जो देखा था
उदीर्णा सबसे स्टोक किया जघन्य अनुत्कृष्ट।
देखो देखो, ये जो हमने नपुंसक वेद में बताया था वहाँ मोहिनी का जो बंद होता है वो थोड़ा ऐसा कहा था, वहाँ स्थिति की अपेक्षा अल्पबोध वो कहा, स्थिति की अपेक्षा, यहाँ प्रदेश की अपेक्षा बात,
यहाँ प्रदेश की,
यहाँ प्रदेश की अपेक्षा बात। फिर भी बंद सबसे कम है, ये तो सिद्ध होता ही है, बंद तो सबसे कम कम ही होगा।
नहीं, से भी बंद कम हो सकता है, जैसे मेरा क्वेश्चन था जगन्य बंद जो हम लोग गिर रहे हैं जगन्य योग से,
उदीर्णा बिल्कुल ज्यादा होगी, क्योंकि बंद कितना होगा, एक समय प्रबुद्ध होगा, और उदीर्णा कितनी हो रही है, असंख्यात समय प्रबुद्ध हो रही है, उदय उदीर्णा कितनी हो रही है, नहीं समझा?
हाँ मैं समझ गया,
बंद कितना, बंद एक समय प्रबद्ध है, उसमें वेरिएशन आप कहो तो कहो, योग के कारण जगन्य उत्कृष्ट में जो कुछ वेरिएशन हो रहा है,
तो यह जगन्य बंद और उत्कृष्ट बंद भी हमको पहले लेना पड़ेगा, पीछे उदीर्णा लेनी पड़ेगी,
वही तो बता रहे हैं। जब बंद पद का स्तोक पना जानना चाहिए का अर्थ क्या है,
जगन्य बंद पहले,
वो सबसे पहले स्थान पर बंद को लेगा, बाद में आगे की बात करना, अब आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार हाँ जगन्य उत्कृष्ट, और वो भी किसी यानी उसी एक समय में घटित करना है ना उसका, अपने उसके उपशम ने
ग्यारह पद हो जाएगा क्या, नौ होगा, नौ भी होगा, क्योंकि हमने जगन्य बंद और उत्कृष्ट बंद वहां पे भी लिया था नपुंसक वेद में,
नहीं
हाँ लिया था ना, नौ पद में
वो परस्थान अल्पभूतों में लिया था, अब यहाँ कहाँ लिया,
अच्छा उदय
नपुंसक वेद का बंद कहाँ है,
अच्छा सॉरी
वो पहले जो लिखा था डायरेक्ट मोहिनी की अपेक्षा बताई थी, बंद को स्तोक जो बताया था ना,
यहाँ पे क्या
वो टोटल मोहिनी की बात की थी, वो आपको जो याद है वो पेज नंबर 23 पर है, वो जीव कौन सा है, तो नपुंसक वेद का उपशम करने वाला पहले समय वाला जीव है, परंतु वहां जो स्थितियां बनती है किसकी, मोहिनी की, मोहिनी का जो स्थिति बंद है उसकी बात थी वहां पर, नपुंसक वेद का तो बंद है ही नहीं,
नहीं।
यहाँ बात अभी प्रदेशों की चल रही है, तो यहाँ भी बंद हो रहा है, कितने प्रदेश बांधेगा, तो एक समय प्रबद्ध बंधेगा, और उदय कितने का चल रहा है यहाँ पर, असंख्यात समय प्रबद्धों का चल रहा है, उदीर्णा भी उतनी हो रही है, क्योंकि गुण श्रेणी है, उपरिम स्थिति है, सब में से वो सारे आकर उदीरित हो रहे हैं, असंख्यात गुण है ना, बंद से उदय उदीरना भी असंख्यात गुण, असंख्यात गुण हो सकता है योग की अपेक्षा, समय वही है। हाँ अब यहाँ आगे 78 पॉइंट पढ़ेंगे, 31 पेज पर लास्ट पैराग्राफ। इस प्रकार इस अल्प बहुत्व के बतुत्व हुआ है, अल्प बहुत्व के समाप्त होने पर कितने भाग को उपशमाता है, इस प्रकार इस दूसरी गाथा की अर्थ प्ररूपणा प्ररूपणग ना बराबर नहीं है, समाप्त हुई, वो मात्रा के बदले ग हुआ है वहां पर, प्रश्न पूछा था ना कितने को उपशमाता है, कितने का संक्रमण उदीर्ण करता है, ये प्रश्न पूछे गए थे। अब आगे तीसरी गाथा की अवसर प्राप्त, अवसर प्राप्त ने भी उसका नंबर आया है गाथा का वर्णन करने के लिए, अर्थ प्ररूपणा को उल्लंघन कर, ये उल्लंघन हुआ है, उल्लंघन कर यानी उसको ओमिट करके उसको लांग कर, चौथी गाथा के अर्थ की विशेष व्याख्या करते हुए आगे के प्रबंध को कहते हैं, वो क्यों लांग दिया उसका बाद में जो करेंगे तभी करेंगे। हाँ ये पूछ ही रहा है शंका का, इस प्रकार क्रम को उल्लंघन करके आगे की प्ररूपणा किस लिए आरंभ की जा रही है, समाधान ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चौथी गाथा की विशेष व्याख्या करने से ही तीसरी गाथा का अर्थ भी प्रायः गतार्थ हो जाता है, यानी उसमें वो गर्भित आ जाता है, यह दिखलाने के लिए उस प्रकार प्ररूपणा का अवलंबन लिया है। तो वो चौथी गाथा की अभी बताएंगे कौन से अवयव है। कम करणम वोच्छिज्यदि अवोच्छिन्नम च होई कम करणम ती विहासा। कौन करण विच्छिन्न होता है और कौन करण अविच्छिन्न रहता है इसकी विभाषा की जाती है। करण हमने देखी ना, जैसे बंद है, सत्ता है, उदय है, उदीर्णा है, उपशम है, संक्रमण है, अपकर्षण उत्कर्षण जो कुछ है इसको करण कहेंगे, कर्मों की अवस्थाएं। तो कौन सी अवस्थाएं विच्छिन्न होती है, नष्ट हो जाती है।
यहाँ पे दिदति विकासित भी लेना ना,
उसी को तो विच्छिन्न में लिया, बाकी तो है इसी रहेगी। और कौन करण अविच्छिन्न रहता है इसकी विभाषा की जाती है। सर्वप्रथम इस चौथी गाथा के पूर्वार्ध की अर्थ विभाषा करते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अप्रशस्त उपशामना आदि करणों में से, कारणों में से हुआ है, करणों में से हमने तीन देखे थे आदि में, अप्रशस्त उपशामना, निधत्ति और निकाचना। आदि करणों में से कषायों की उपशामना करने वाले जीव के किस अवस्था विशेष में कौन करण विच्छित होता है, यानी कहाँ कौन से करण रुक जाते हैं और कौन करण विच्छिन्न नहीं होता, यानी वह करण वैसे ही चलता रहेगा, इस अर्थ विशेष का निश्चय करने के लिए इस सूत्र का अवतार हुआ है। तम जहा वह जैसे, यह पृच्छा वाक्य सुगम है। इस प्रकार पृच्छा के विषय किए गए प्रथम गाथा के पूर्वार्ध का व्याख्यान करते हुए सर्वप्रथम वहाँ करण भेदों का ही, कितने करण हैं उनके भेदों के ही संख्या के साथ नाम निर्देश करने के लिए, करण कितने हैं, कौन कौन से हैं, इसके लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अठ विहम ताव करणम जहाँ अपसत्थ उवसामना करणम निधत्ति करणम निकाचना करणम बंध करणम उदीर्ण करणम उक्कडना करणम उक्कडना करणम संकामण करणम च। करण आठ प्रकार के हैं, यथा अप्रशस्त उपशमना करण, निधत्ति करण, निकाचना करण, बंधन करण, उदीर्णा करण, अपकर्षण करण, उत्कर्षण करण और संक्रमण करण। उदय और सत्ता को नहीं लिया, उदीर्णा को ले लिया। कौन कौन से है तेजल? पहले अप्रशस्त उपशमना, निधत्ति, निकाचना, पहले ये तो तीन बता देना। अभी उसके बाद बंध, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण, ये आठ हो गए। इस प्रकार करण आठ प्रकार के हैं। इस प्रकार ये आठ करण यहाँ पर विवक्षित है, यानी इन आठ करणों की यहाँ बात है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इन करणों, क्योंकि वो अप्रशस्त उपशामना करण आदि कह दिया ना उन्होंने, तो यहाँ इनकी बात चलेगी आठ की। इन करणों के लक्षणों की प्ररूपना सुगम है, इसलिए यहाँ पर ग्रंथ के गौरव को प्राप्त हो जाने से, यानी ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाने के भय से उनका विस्तार नहीं किया जाता। अब इन करणों में से किन कर्मों के किस स्थान पर कौन करण विच्छिन्न हो जाते हैं, देखो ये जो अवस्थाएं होती है तो अलग अलग कर्मों में होती रहती है। किसी कर्म का नाम निधत्ति और निकाचित नहीं है। कर्म के कुछ परमाणु अपनी जगह नहीं छोड़ते, उसमें अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण उपशम नहीं होता है तो उसको निकाचना कहेंगे। और फिर उसमें अपकर्षण उत्कर्षण होता है पर संक्रमण वगैरह नहीं होगा तो उसको निधत्ति कहेंगे। अप्रशस्त उपशामनाएं उदय में नहीं आएंगे, अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं, उसको अप्रशस्त उपशामना, ये अलग अलग उसके नाम है। तो कहते किस कर्म के किस स्थान पर कौन सा करण विच्छिन्न होता है, और कौन करण विच्छिन्न नहीं होता इसका प्ररूपण करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। गाथा में तो यही पूछा था, तो कहते एदेसिम करणानम अनियट्टि पढ़म समये सौव कम्माणमपि अपसत्त वसामना करणम निधत्ति करणम निकाचना करणम च वोच्छिन्नानि। यानी ये पहले तीन करण यहाँ विच्छिन्न होते हैं, यानी अभी तक जो अपनी जगह नहीं छोड़ने वाले परमाणु अभी अपनी जगह छोड़ेंगे, उसमें भी अपकर्षण वगैरह जो कुछ है ये सब हो जाएगा। हिंदी पढ़ेंगे। इन करणों में से अनिवृत्ति करण के प्रथम समय में यानी आठवें ये अपूर्व करण के अंतिम समय तक इनमें ये अप्रशस्त उपशमना निधत्तिपना निकाचनपना था, अब कहते वो निकल जाएगा। किस कौन कौन से में? सभी कर्मों के। अप्रशस्त उपशमनाकरण निधत्तिकरण निकाचनाकरण विच्छिन्न हो जाते हैं। इन अनंतर पूर्व निर्दिष्ट करणों में से अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में सर्वप्रथम सब ज्ञानावरणादि कर्मों के अप्रशस्त उपशमना आदि तीन करण विच्छिन्न हो जाते हैं। ये तीनों करण तीव्र संक्लेश के निमित्त से होते हैं। इसलिए यहाँ पर अनिवृत्तिकरण के महात्म्य से तीव्र संक्लेश निमित्तक उन करणों की विच्छित्ति की सिद्धि में कोई बाधा नहीं पाई जाती। यहाँ परिणाम ऐसे हो जाते हैं विशुद्ध कि संक्लेश के कारण होने वाले ये जो तीन है अप्रशस्त उपशमना निधत्ति और निकाचना ये नष्ट हो जाते हैं।
या पे छठे सातवें गुण स्थान वाले परिणाम को भी तीव्र संकोच वाला कहते हैं।
उसकी अपेक्षा से कहेंगे अपेक्षाकृत भेद कहेंगे। अनिवृत्तिकरण के आगे उसकी क्या है? कुछ नहीं। अब किन कर्मों के शेष कर्णों में से कितने कर्ण होते हैं इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया है। कौन से कर्ण विच्छिन्न हो जाते हैं वो बताए, अब कौन से हो रहे हैं वहां पर वो भी बात बताएंगे। शेषाणि ताधे आउग वेदनीय वज्जाणम पंचविकरणानि अस्थि। आयु कर्म और वेदनीय कर्म को छोड़कर वहां शेष पांचों ही करण होते हैं। ये आयु और वेदनीय को क्यों छोड़ा प्रेरणा बेन? किसकी आयु की? क्या आयु के उदीर्ण की? कब होती है? छठे
के अंत में।
बंद की बात नहीं, उदीर्ण की। उदीर्ण की विच्छित्ति हो जाती है। देखो उस अवस्था में आयु कर्म और वेदनीय कर्म को छोड़कर छह मूल अनिवृत्तिकरण के पहले समय छह मूल प्रकृतियों के शेष कौन कौन से? अभी पहले तीन हमने तो उसकी बात की, उच्छिन्न हो गए, यानी बंधन उदीर्णा अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण करण पांचों ही होते हैं, ही लगाया, क्योंकि उनका अभी भी विच्छेद नहीं हुआ है, क्योंकि उनका बंद भी चल रहा है यथा योग्य जिसका जो है शंका। मूल प्रकृतियों का संक्रमणकरण कैसे संभव है? क्योंकि उनमें परस्थान संक्रम नहीं स्वीकार किया गया है। तो कहते ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा उनका भी संक्रम बन जाने में विरोध का अभाव है। जैसे ज्ञानावरण की पांच है, ज्ञानावरण का संक्रमण तो दर्शनावरण में नहीं होगा, परंतु पांच ज्ञानावरण का आपस में संक्रमण हो सकता है। दर्शनावरण के जो आपस में भेद है उत्तर प्रकृति उनमें संक्रमण पाया जाता है। तो कहते उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा उनका भी संक्रम बन जाने में विरोध का अभाव है, उनका संक्रम होता रहता है। अब यहाँ जिनका निषेध किया है ऐसे आयु कर्म और वेदनीय कर्म के कितने कर्ण होते हैं, ऐसी आशंका का निराकरण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं जो अभी हम कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतो। नितिन भाई।